മോക്ഷമാർഗസ്യനീതാരം ഭീതാരം കർമ്മഭൂഭൃതാം ജ്ഞാതാരം വിശ്വതത്വാനാം വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധയേ. ബാരഹത്തപ്പ് അനശനാപമൗദര്യ വൃത്തി പരിസംഖ്യാന രസപരിത്യാഗ വിവിക്തശയ്യാസന കായക്ലേശ ബാഹ്യന്തപ അനശൻ അവമൗദര്യ വൃത്തി പരിസംഖ്യാൻ രസപരിത്യാഗ വിവിക്തശയ്യാസന ഓർ കായക്ലേശ ഈ ബാഹ്യതപ ഹൈ. छह भेद हो गए. दृष्ट फलानपेक्षम लौकिक फल की कामना न करके संयम प्रसिद्धि रोगोच्छेद कर्म विनाश ध्यान आगमा वाप्त्यर्थम अनशनम संयम की सिद्धि के लिए रोग को नष्ट करने के लिए कर्म को नष्ट करने के लिए ध्यान और स्वाध्याय की प्राप्ति करने के लिए अनशन तप होता है. पांच उद्देश्य बताए अनशन तप के आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने. सबसे पहले संयम की सिद्धि होती है. उपवास करने से इंद्रियां वश में होती है और संयम सिद्ध होता है. फिर रोगोच्छेद होता है. उपवास के द्वारा रोग नष्ट हो जाते हैं. देखिए आप, ये 1500 वर्ष पूर्व आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आज जो उपवास चिकित्सा की बात आती है ना सुनने में, वो 1500 साल पहले आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उपवास से रोगों का उच्छेद होता है. कर्म विनाश करने के लिए उपवास करते हैं. ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए उपवास करते हैं, अनशन करते हैं. फिर संयम प्रजागर दोष प्रशम संतोष स्वाध्यायादि सुख सिद्ध्यर्थम अवमौदर्यम. संयम की सुखपूर्वक सिद्धियों, उपवास में थोड़ा क्लेश पूर्वक सिद्धि होती है संयम की. बिल्कुल आहार जल सब छोड़ना होता है उपवास में, अनशन में. तो यहां कहते हैं कि थोड़ा भोजन ले लो, भरपेट मत लो, उनोदर हो गया, अवमोदर हो गया. और प्रजागर दोष प्रशम, जो दोष जागृत हो रहे हैं उनको शांत करने के लिए उनोदर कर लो. प्रतिदिन भरपेट भोजन लेने से कुछ दोष उत्पन्न होने लग जाते हैं शरीर में, तो फिर उनोदर कर लिया. फिर संतोष, संतोष वृत्ति के लिए भी उनोदर किया जाता है कि देखो आप भरपेट लेते हैं और आज थोड़ा कम लेकर के देखो कितना आपको संतोष होता है. स्वाध्याय आदि की सुखपूर्वक सिद्धि करने के लिए उनोदर आवश्यक है. फिर भिक्षार्थिनो मुनि रेकागार आदि विषय संकल्प चिंतावरोधो वृत्ति परिसंख्यान माशा निवृत्त्यर्थम अवगंतव्यम. भिक्षा के इच्छुक जो साधु हैं, मुनि हैं, उनका एक घर आदि संबंधी संकल्प यानी अपने चिंता का अवरोध कर देना, अधिक विकल्प छोड़ देना, वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है. और वह आशा की निवृत्ति के लिए जानना, वृत्ति परिसंख्यान तप करने से ना जो आशा रहती है उससे निवृत्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है. फिर इंद्रिय दर्पण निग्रह निद्रा विजय स्वाध्याय सुख सिद्ध्याद्यर्थो घृतादि वृष रस परित्याग चतुर्थं तपः। इंद्रियों का जो मद होता है उसका निग्रह करने के लिए, निद्रा को जीतने के लिए और स्वाध्याय की सुखपूर्वक सिद्धि आदि करने के लिए घी आदि जो वृष रस है, जो भारी है पचने में, ऐसी वस्तुएं छोड़ देना, तो वो चौथा तप है रस परित्याग। हेतु कितने सुंदर दे रहे हैं कि इन इन कारणों से ये त्याग किया जाता है। शून्यागारादिषु विविक्तेषु, शून्य जो अगार आदिक है, निवास वगैरह हैं, और विविक्त हैं, विविक्त का मतलब विविक्तम पूत विजिनी, अमरकोश में आता है कि विविक्त शब्द का अर्थ होता है पवित्र अथवा निर्जन, जहां लोगों का आवागमन नहीं है, ऐसे स्थानों पर। जंतु पीड़ा विरहितेषु, जहां पर जीवों की पीड़ा नहीं होती, पीड़ा जीवों को पीड़ा पहुंचाने से जो रहित है, ऐसे स्थानों पर। संयतस्य शय्यासनम, आबाधात्यय ब्रह्मचर्य स्वाध्याय ध्यानादि प्रसिद्ध्यर्थम कर्तव्यमिति पंचमं तपः। तो जीवों की पीड़ा से रहित स्थानों पर, शून्यागार और विविक्त स्थानों पर, जो संयत का शय्यासन होता है, यानी वहां सोते हैं और वहीं पर आसन लगाकर स्वाध्याय आदि ध्यान आदि करते हैं, तो वो आबाधात्यय, आबाधाओं का विनाश करने के लिए, कुछ बाधाएं ऐसे तप करने से नष्ट हो जाती है। फिर ब्रह्मचर्य, ऐसे स्थानों पर तपस्या करने से ब्रह्मचर्य में निर्मलता आती है, क्योंकि वहां पर रागी लोग जा ही नहीं सकते, तो वहां वैसी तरंगे मिलेंगी नहीं। अन्य स्थानों पर तो कहीं कुछ ऐसे प्रदूषण मिल सकता है, पर वो क्षेत्र वैसे प्रदूषित नहीं होगा रागियों से, तो ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए और स्वाध्याय और ध्यान आदि की सिद्धि के लिए भी विविक्त शय्यासन करने योग्य है। ऐसा यह पंचम तप है, जैसे भद्रबाहु स्वामी की गुफा है, कहां पर है, चंद्रगिरी पे, श्रवण बेलगुल में, तो वहां जाके बैठ गए ध्यान में स्वाध्याय में, जब भीड़ भाड़ ना हो तो शांति से बैठे रहे, तो विविक्त शय्यासन हो जाएगा। फिर लोगों का आवागमन भी हर साल भर तो रहता नहीं इतना ज्यादा, तो उन दिनों जिन दिनों आवागमन कम हो जाता है, हो ही जाता है, कम हो ही जाता है, तब वहां पर ये तप होता है। ऐसे अन्य भी बहुत से स्थान है जो अभी आचार्य महाराज ने बताया। फिर आतपस्थानम वृक्ष मूल निवासो निरावरण शयनम, बहुविध प्रतिमा स्थानम इत्येव मादि काय क्लेशः तत्षष्ठम तप। धूप में खड़े होना, पेड़ के नीचे रहना और निरावरण शयन करना, अब यहां पर एक बात विचारणी है मुनियों के स्वरूप के बारे में, एक निर्णय करने वाले वर्ग के द्वारा कि मुनि ऐसे ही होते हैं, तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि निरावरण शयन करना काय क्लेश नाम का तप है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि निरावरण न शयन करने का भी विकल्प होगा। घास वगैरह में या फिर ऐसे निरावरण में किसी छत वगैरह के नीचे, निरावरण का अर्थ खुला आकाश होता है, तो ऐसा भी एक विकल्प हो सकता है। तो फिर बहुविध प्रतिमा स्थानम, और बहुत प्रकार के प्रतिमा योग धारण करना, उत्कुटिकासन, फिर एक पार्श्वशय्या वीरासन, ऐसे कई आसन है। आराधना सार ग्रंथ की टीका में लिखा है वज्रासन, वीरासन, पद्मासन आदि विभिन्न आसनों में साधु ये अभ्यास करते हैं। तत्काय क्लेशम षष्ठम तप, वो छठा काय क्लेश नाम का तप। तत्किमर्थम, वो क्यों करते हैं? तो आचार्य कहते हैं देह दुख तितिक्षा, शरीर संबंधी दुखों को सहन करने के लिए। सुखा नभिश्वंग, और सुख में आसक्त न होने के लिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसे कठिन तप करने की आवश्यकता क्या है। तो उसका जवाब यह है कि अगर तप नहीं करेंगे तो फिर सुखी रहने की आदत पड़ जाएगी। तो सुख में आसक्ति छोड़ने के लिए वो ऐसे तप करते हैं। फिर प्रवचन प्रभावनाद्यर्थम, और आगम की प्रभावना अधिक करने के लिए भी वो कायक्लेश नाम का तप करते हैं। परिषस्यास्य को विशेषयति, परिषय में और इसमें फर्क क्या है तप में? तो आचार्य उत्तर देते हैं यदृच्छयोपनिपतितः परिषः, अपने आप आया हुआ जो होता है वो परिषय होता है। स्वयं कृतः कायक्लेश, कायक्लेश जो होता है स्वयं किया जाता है। बाह्यत्वमस्य कुतः, फिर इसको बाह्य तप क्यों कहा? बाह्यपना क्या है इसमें? तो आचार्य कहते हैं कि बाह्य द्रव्यापेक्षत्वात् पर प्रत्यक्षत्वाच्च बाह्यत्वम्। दो कारणों से बाह्य तप को बाह्य तप कहते हैं। पहला कारण यह है कि कुछ बाह्य साधनों की अपेक्षा रखता है ये बाह्य तप। भोजन का छोड़ना है तो वो बाह्य वस्तु है, रस को छोड़ना है तो वो भी बाह्य वस्तु है। तो ये सब बाह्य अपेक्षा रखता है, इसलिए बाह्य तप है। और दूसरा, अन्य लोगों को दिखता है, आत्मा के बाहर भी ये देखने वाले को समझ में आता है कि ये तपस्वी है, तो इसलिए भी उनको बाह्य तप कहते हैं। छह बाह्य तप। अब अभ्यंतर तपो भेद प्रदर्शनात्मा, अब अभ्यंतर तप के भेदों को दर्शाते हुए, दर्शाने के लिए आचार्य उमा स्वामी कहते हैं प्रायश्चित्त विनय व्ययावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम्। प्रायश्चित्त विनय व्ययावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान, ये उत्तरम, बाह्यम तप उत्तरम तप, उत्तरम का अर्थ अभ्यंतरम तप, ये दोनों शब्द बनते हैं अभ्यंतर और आभ्यंतर। अभी के साथ अंतर की संधि करेंगे तो अभ्यंतर बन जाता है, और आंग अभी और अंतर इनको जोड़ेंगे तो आभ्यंतर बनता है। तो दोनों शब्द कोश में मिलते हैं, व्याकरण से शुद्ध है। यहां पर अभ्यंतर का प्रयोग किया हुआ है। कथमस्य अभ्यंतरत्वम्, इस तप का अभ्यंतरपना कैसे है? तो आचार्य बोलते हैं मनो नियमनार्थत्वात्, क्योंकि ये मन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए ये आभ्यंतर तप। प्रमाद दोष परिहार प्रायश्चित्तम्, प्रमाद से उत्पन्न हुए दोषों को छोड़ना प्रायश्चित्त। पूज्येष्वादरो विनय, पूज्य जनों के प्रति आदर करना विनय है। कायचेष्टया द्रव्यांतरेण चोपासनम वैयावृत्तिम, शरीर की चेष्टा पूर्वक अथवा किसी अन्य द्रव्य के माध्यम से उपासना करना, साधुओं की सेवा करना वैयावृत्तिम, वैयावृत्ति है। और ज्ञान भावना लस्य त्याग स्वाध्याय, ज्ञान की भावना करना अर्थात स्वाध्याय करना, अध्ययन करना। और आलस्य त्याग, और आलस्य को छोड़ देना तो स्वाध्याय कहलाता है। आत्मात्मीय संकल्प त्यागो वित्सर्ग, मैं और मेरा इस संकल्प का त्याग कर देना वित्सर्ग अर्थात कुछ मेरा नहीं है, ये छोड़ दिया बिल्कुल। यानी अपने उपकरण तक के लिए कहा कि उतने समय के लिए त्याग देना वित्सर्ग तप है। और व्युत्सर्ग के बाद ही ध्यान में प्रवेश होता है और फिर उससे फिर मोक्ष हो जाता है। तो चित्त विक्षेप त्यागो राग ध्यानम, चित्त संबंधी जो विक्षेप है रागाधिक, विक्षेप का अर्थ होता है राग द्वेष, उसका त्याग कर देना ध्यान है। तत् भेद प्रतिपादनार्थ माह, अंतरंग तप के भेद जो छह बतलाए थे उनके भेद बताने के लिए आगामी सूत्र कहते हैं, नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानात्, नौ प्रायश्चित होते हैं, चौदह नहीं चतुर यानी चार विनय होती है, दस वैयावृत्ति होती है, फिर पांच स्वाध्याय होते हैं और दो व्युत्सर्ग होते हैं। प्राग ध्यानात ध्यान से पहले तक के जो पांच अंतरंग तप है उनके ऐसे ऐसे भेद होते हैं, ध्यान के भेद आगे बताएंगे। ध्यानस्य बहु वक्तव्यत्वात् पश्चात वक्ष्यत इति, ध्यान में बहुत कुछ बताने योग्य है इसलिए बाद में अलग से बताया जाएगा। आद्यस्य भेद निरूप स्वरूप निर्ज्ञानार्थमः, पहला जो प्रायश्चित था उसके भेद और स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापनाः। नौ भेद बतलाए प्रायश्चित के, तत्र उनमें गुरवे प्रमाद निवेदनम, दश दोष विवर्जितम आलोचनम, दस दोष से रहित, दस प्रकार के दोष होते हैं आलोचना के, उन दशों दोषों से रहित होकर गुरु से अपने प्रमाद का निवेदन कर देना कि मेरे से ऐसा प्रमाद हो गया, मेरी ऐसी भूल हो गई, चूक हो गई। फिर मिथ्या दुष्कृताभिधान धानात अभिव्यक्त प्रतिक्रियम प्रतिक्रमणम, कोई दोष हुआ और तुरंत उस समय मुख से बोलना तस्मिच्छा में दुक्कड़म, तो वो प्रतिक्रमण कहलाता है। तदुभय संसर्गे सति विशोधनात् तदुभयम्, आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों का एक साथ कर देना, उनका दोनों का एक संसर्ग करना, तो उनके संसर्ग होने पर जो विशोधन होता है शुद्धिकरण होता है उसके कारण तदुभय नाम का तप है। प्रायश्चित का भेद है, कुछ ऐसे दोष होते हैं जो आलोचना से टल जाते हैं, कुछ ऐसे दोष होते हैं जो प्रतिक्रमण से शुद्ध होते हैं, कुछ ऐसे दोष होते हैं जो आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों के साथ ही शुद्ध होते हैं, अकेले आलोचना से भी नहीं होते और अकेले प्रतिक्रमण से भी नहीं होते, दोनों साथ में करना होते हैं। फिर संसक्तान्न पान उपकरणादि विभजनम विवेक है, संसक्त यानी जिसके ऐसे अन्न पान उपकरण आदि जिसके प्रति ज्यादा आसक्ति हो गई आपको, तो उसका विभाग कर देते हैं गुरु कि अब ये चीज तुम नहीं लोगे, छोड़ दो ये। तो ऐसे जिस वस्तु के प्रति ज्यादा राग हो जाता है उसको छोड़ देना, विवेक नाम का प्रायश्चित। जैसे किसी ग्रंथ को लेकर दो साधुओं में विवाद हो गया कि नहीं अब ये हम रखेंगे, अभी वो दूसरे बोलते हैं कि नहीं हम रखेंगे, तो गुरु बोलते हैं कि क्या चल रहा है, बोले कि हमें रखना है ये ग्रंथ, तो गुरु बोलेंगे कि दोनों नहीं रखोगे, बोले अभी आप लोग इतना आसक्ति अच्छी बात नहीं है, आप भी कर लो स्वाध्याय, आप भी कर लो, हम रखेंगे ये क्या कर रहे हो, ये तो सधर्म विसंवाद हो गया, तो इसके लिए प्रायश्चित ये होगा कि कोई नहीं रखेगा, लाओ मुझे दे दो, खत्म खेल। कायोत्सर्गाधिकरण व्युत्सर्ग, फिर कायोत्सर्गाधिक करने को व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित कहते हैं। एक व्युत्सर्ग तप अलग है, यहां पर व्युत्सर्ग प्रायश्चित बता रहे हैं। कायोत्सर्गाधिक देते हैं गुरु महाराज, कितना क्या हुआ, तो बोले ऐसे चार कायोत्सर्ग कर लो या दो कायोत्सर्ग कर लो, ऐसे कायोत्सर्ग देते हैं करने के लिए। अगर चीटी आ गई पैर के नीचे और गुरु से बताते हैं कि ऐसी त्रुटि हो गई है, तो बताते समय उनके मनोभाव कैसे हैं बताने वाले साधु के, वो भी देखते हैं गुरु महाराज कि उसके मतलब उनके अंदर पश्चाताप आदि की वेदना है कि नहीं, या फिर होती हो तो सहज रूप से जिनके हृदय में करुणा होती है उनको किसी जीव पर जीव को बाधित करने पर पीड़ा तो होती है, फिर उनको कहते हैं कि तीन का उत्सर्ग कर लो। तो ये वित्सर्ग नाम का तप हो गया प्रायश्चित के अंतर्गत। फिर अनशनाव मौदर्यादि लक्षणम तप, फिर तप नाम का जो प्रायश्चित है वो देते हैं कि इतने उपवास कर लेना, इतने ऊनोदर कर लेना, ये तप नाम का प्रायश्चित है। ये वार्षिक प्रायश्चित में भी तप नाम का प्रायश्चित दिया जाता है, उपवास ऊनोदर वगैरह, और अन्य भी कई स्थानों पर दिया जाता है। दिवस पक्ष मासादिना प्रव्रज्या हापनम छेद, कुछ दिनों के लिए, कुछ पक्षों के लिए, कुछ महीनों के लिए, और आदि शब्द से कुछ वर्षों के लिए दीक्षा का हापन कर देना छेद नाम का प्रायश्चित है। हापन का अर्थ होता है समापन। मान लो आपकी दीक्षा 12 साल पहले हुई है, लेकिन कोई ऐसी त्रुटि हुई है, तो फिर आचार्य महाराज बोलते हैं कि अब ये तो ऐसी त्रुटि हो गई कि इसका प्रायश्चित तो ये है। तो वो शिष्य बोलते हैं कि आप आदेश कीजिए, मैं स्वीकार करूंगा। तो बोले कि आपकी दीक्षा 5 साल दीक्षा का छेद हो जाएगा। तो 5 साल की दीक्षा उनकी छिन्न हो जाती है, वो दीक्षा छेद नाम का प्रायश्चित। फिर पक्ष मासादि विभागेन दूरतः परिवर्जनम, एक पक्ष के लिए आप संघ से बाहर रहोगे, एक महीने के लिए या एक वर्ष के लिए आदिक का विभाग कर करके, समय सीमा बांध करके, दूरतः परिवर्जनम, दूर उनको छोड़ देना, संघ से अलग कर देना, परिहार नाम का प्रायश्चित है। ये प्रायश्चित आर्यका के लिए वर्जित है। आर्यका के लिए प्रायश्चित निषिद्ध है, नहीं कर सकते। फिर उपस्थापना नाम का प्रायश्चित क्या है? पुनर्दीक्षा प्रापणम उपस्थापना, वापस दीक्षा देना। आपसे इतनी बड़ी भूल हो गई, इतनी त्रुटि हो गई, तो अब आपको वापस दीक्षा दी जाती है। वट्टाराधने में ऐसे ही आया कि चंद्रगुप्त मुनि ने 12 वर्ष देवों के हाथ से भोजन लिया, तो फिर विशाखाचार्य ने कहा कि आपके लिए ये उपस्थापना करनी होगी, तो उनको पुनर्दीक्षित किया था। भले आप शुद्ध हैं, नमस्कार के योग्य हैं, लेकिन ये भोजन हमारे लिए योग्य नहीं है, इसलिए आपको पुनर्दीक्षा दी जाएगी। तो वैसा हुआ था। विनय विकल्प प्रतिपत्त्यर्थमाह, विनय के भेद की जानकारी के लिए आचार्य कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र उपचारा। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। विनय इत्यधिकारेण अभिसंबंध क्रियते, विनय इस अधिकार की अपेक्षा अभिसंबंध किया जाता है ज्ञान विनयो, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय चेति। सबहुमान मोक्षार्थम ज्ञान ग्रहणाभ्यास स्मरणादिर ज्ञान विनय। बहुमान सहित, बहुमान का अर्थ होता है द्रव्य भाव पूजा, द्रव्य पूजा और भाव पूजा के साथ मोक्ष के लिए ज्ञान को ग्रहण करना और ज्ञान का अभ्यास करना, ज्ञान को स्मरण में रखना आदि ज्ञान विनय है। फिर शंकादि दोष विरहितम तत्वार्थ श्रद्धानम जर दर्शन विनय, शंकादिक अतिचारों से रहित जो तत्वार्थ श्रद्धान है वो दर्शन विनय है। पहली प्रतिमा से उसका प्रारंभ हो जाता है। तद्वतश चारित्रे समाहित चित्तता, चारित्र विनय है और दर्शन ज्ञान दोनों से युक्त जो साधु है उनका चारित्र में समाहित चित्तता, मन लग जाना चारित्र विनय है, सावधान रहते हैं। और प्रत्यक्षेश्व, प्रत्यक्षेशु जो प्रत्यक्ष अपने सामने है, ऐसे आचार्य आदिशु, आचार्य आदि के प्रति अभ्युत्थानम उठकर खड़े होना। कभी भी गुरु आते हैं, साधु आते हैं, तो अपन बैठे नहीं रह सकते, उठकर तत्काल खड़े होना होता है और अभिगमनम कुछ दूर उनके साथ चलना होता है। और अंजलि करणम और ऐसे हाथ अंजलि जोड़ लेना होते हैं आदि आदि जो भी हैं, और विनम्र वचन भी बोलने होते हैं, ये सब उपचार विनय है। फिर परोक्षेश्वपि, और जो परोक्ष है ये तो प्रत्यक्ष की बात हुई, सामने है तो ऐसा करना, और जो सामने नहीं है उनके प्रति क्या करोगे? तो काय वांग मनो भी, शरीर से, वचन से और मन से अंजलिक क्रिया, गुण संकीर्तना, नुस्मरण आदि, हाथ जोड़ना, परोक्ष में हाथ जोड़ना, उनके गुणों का संकीर्तन करना, स्तुति करना और उनका बार बार स्मरण करना आदि जो भी है, ये परोक्ष विनय है। तो विनय वैसे पांच प्रकार की होगी, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और उपचाय विनय में प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय, ऐसे दो भेद होंगे। इसके उपरांत वैयावृत्त तप का वर्णन करने के लिए आगामी सूत्र आगामी सत्र में देखा जाएगा। जैनम जयतु शासनम।